Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इन्होंने अनुभूति की तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जिन चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं इन्होंने उनका त्याग किया। इनके पास वो थी, बुद्ध के पास राज्य था, मीरा राजघराने की थी, कोई कमी नहीं थी। जो हम चाह रहे हैं कि रुपया मिल जाए, महल बन जाए, मकान बन जाए, जिसके पीछे हम पड़े हैं, जिनका उद्देश्य रस था, उन्होंने इसको छोड़ा तब रस में गए। हम इसके पीछे पड़े हुए हैं तो रस को कैसे प्राप्त करें? एक भी उदाहरण तो नहीं मिलेगा कि जिससे हम कह सकें कि किसी ने राज्य प्राप्त करके तो रस को प्राप्त कर लिया। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े भी वो लोग, जैसे सिकंदर महान, अलेक्जेंडर था, सोलोमन था, बड़े बड़े राजा हुए हैं, कारों था, जिन्होंने दुनिया भर को जीतने के ख्वाब देखे और बहुत बहुत धन इकट्ठा भी किया, लेकिन अंत में सबके सब का वही रहा कि जाते हुए संसार से आज उनका कोई निशान भी नहीं है कि वो कहां थे। और सचमुच में ही आप में से जिन्होंने भी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की बात सुनी हो, कभी पढ़ा होगा कहीं कभी किसी क्लास में, आज इस बात पर रिसर्च हो रही है कि सिकंदर मरा कहां था। सिंध के इलाके में, यहां से भारत से वापस जाते हुए, वो सिंध के इलाके में एक पूरा एरिया है जो जुल्फकार अली भुट्टो का घर था कभी, या वो सिंध प्रांत से बहुत से हमारे भी लोग इधर वापस आ गए थे, सखर सिंध नदी, तो वो वहां मरा था। तो आज रिसर्च हो रही है इस बात पर कि सिकंदर मरा कहां था। तो इतने महान के लिए तो वो मरा कहां, उसकी कब्र कहां है, वो भी कोई नहीं। लेकिन मीरा जहां जहां गई, बुद्ध जहां जहां गया, जहां उनके कदम पड़े वहां भी मंदिर बने हुए, मरने की तो बात ही छोड़ो, एक रात यहां रहे थे बुद्ध, ये कह के भी मंदिर बने। आप वृंदावन चले जाओ, आपको बतलाएंगे लोग कि यहां पर चैतन्य महाप्रभु की ये बैठक है, इसमें वो आते ही थोड़ी देर बैठे थे, फिर वो कीर्तन करते हुए उस जगह, कदम कदम पर उनके नाम। तो जिन्होंने रस की उपलब्धि की, जो रस प्रस्फुटित हुआ, उनके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं है कि कहां थे वो, क्या हुआ, वो तो जहां कहीं भी अगर बैठ भी गए हैं एक सेकंड के लिए तो वहीं पर ही उनका चिन्ह बन गया, बैठक बन गई, और आज भी वहां कीर्तन हो रहा है, लोग जाते हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें यहां आके बड़ी शांति मिली। उन स्थानों तक के परमाणु उन्होंने ऐसे कर दिए कि जो रस आत्मिक हो। तो सोचना यही है कि सचमुच में मुझे चाहिए क्या। अगर ये जानते हुए भी कि चाहिए रस और फिर भी हम दुनिया के उसमें फंसे हुए हैं, तो उसका तो कोई इलाज है ना, उसके लिए उपनिषद है ना, उसके लिए कोई और है, वो तो ठीक है अपने काम में लगा हुआ है, लगा रहना चाहिए, उसके लिए ये विषय नहीं। इसीलिए उन्होंने वैराग्यवान की बात की। वैराग्यवान का मतलब है जो अनावश्यक को छोड़ता है उसको वैराग्यवान कहते हैं, और जो आवश्यक की प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसको अभ्यास कह लेते हैं, वैराग्य और अभ्यास। तो आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, इसका विवेक जब तक नहीं होगा तब तक न त्याग होगा न संग्रह होगा कि छोड़े किसको और संग्रह किसका करें। तो यहां पर देखो, इस उपनिषद में विशेषकर ये उपनिषद और उपनिषदों में सब तरह की बातें, इस उपनिषद में स्वाय ओम के और किसी का कुछ जिक्र नहीं। ओम के माध्यम से ही साधना है, ओम का ही ध्यान है, ओम का ही चिंतन है, ओम का ही जप है। और ओम के इस जप से जो वैराग्यवान नहीं है अगर वो इसमें लग गया तो वैराग्यवान हो जाएगा, ऐसा इस उपनिषद की प्रतिज्ञा कि इस उपनिषद में अगर कोई लग गया, किसी के मन में ये बात आ ही गई और इस साधना में लग गया, जिससे पहले ही जो वैराग्यवान है वो तो पहुंच जाएगा एकदम इसको पढ़कर सुनकर या इसको अपनाकर, जो नहीं है तो धीरे वो वैराग्यवान बन जाएगा। अर्थात इससे कोई सांसारिक उपलब्धि नहीं होगी, ऐसा इसका शुरू में ही ये बात उन्होंने इसकी जो शांति पाठ में ही आपने देख लिया था कि भद्रम करणे विष्णुनाम देवाः, यही बात जो पहले दिन भी इस बात को दोहराया कि भद्रम पर ही अगर हम टिके रहें, उसी पर ही हम विचार करते रहें तो अभद्र छूट जाएगा। अभद्र के छूट जाने का नाम ही वैराग्य है और भद्र के जीवन में आ जाने का नाम ही अभ्यास है। भद्रता आ जाए, अभद्रता छूट जाए, तो अभद्र का अर्थ फिर इतना व्यापक हो जाएगा कि सब नाशवान चीजें जो भी छूटने वाला है, तो फिर ये बात आ जाती है कि जो छूट ही जाना है तो उसको अभी भी हमारा वहम है कि मैंने पकड़ के रखा हुआ है, असल में वो अब भी छूटा हुआ है। मुख्य बात इसमें यह होगी कि अहंकृति की भावना जाती रहे, मैं करने वाला हूं ये बात मन में से निकल जाए, होता रहे जो भी हो रहा है, करते रहो जो भी कर रहे हो, लेकिन ये मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ भद्रता का विचार बना रहे। मतलब झूठ बोलते रहो और अपने आप को अकर्ता मानते रहो कि मैं करने वाला नहीं हूं, चोरी करते रहे और माने कि मैं करता हूं, तो फिर भद्रता वाली बात खत्म हो। जो प्रतिज्ञा लेके चले थे उसको मन में रखते हुए अकर्तापन की भावना आ जाए तो इस उपनिषद का अधिकारी होगा वो व्यक्ति, ऐसा इसके प्रारंभ के श्लोकों में जो कार्य का में कहे गए तो ये बात उन्होंने उसमें बतलाई कि इस उपनिषद के लिए मन के अंदर पवित्रता की बहुत अधिक जरूरत है और मेरी सचमुच की आवश्यकता क्या है उस बात का ध्यान रखने की बात। तो आवश्यकता पर ध्यान बना रहे और अनावश्यक छूटता रहे, तो फिर उस बात पर जब आदमी चल पड़ता है जीवन में तो यहां जो ये समझाने जा रहे हैं वो स्पष्टतया समझ में आ जाता है। अन्यथा हो सकता है बुद्धि की तीक्ष्णता से, बुद्धि की सूक्ष्मता से हम शब्दों को समझ लें, उनके अर्थों को भी समझ लें, लेकिन वो जीवन में घटित नहीं होंगे। तो इसका अधिकारी कौन है? केवल वही इसका अधिकारी है जो व्यक्ति आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना जानता है। इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ मुझे चाहिए ये मेरी आवश्यकता है या ये मेरी इच्छा है। इच्छाओं को छोड़ना, आवश्यकताओं को पूरा करना, यही भद्रता की निशानी। भद्रता इसी में ही है कि आवश्यक जो है उसके लिए ही हम प्रयत्न करें, लेकिन उसके साथ ही साथ शास्त्र भी ये कहते हैं कि जीवन में जो आवश्यक है वो आपको अवश्य ही मिलेगा, आप उसी का चिंतन करें, उसी का प्रयत्न करें तो हम आवश्यकता के पूरे होने का मतलब होता है पूर्ण काम। देखो बाकी जितने भी मंत्र हैं उनसे इच्छाओं की पूर्ति होती है, साकाम मंत्र हैं। लोग कहते हैं, देखा भी है, भगवान राम ही पैदा हुए थे पुत्र इष्ट यज्ञ से, औरों की तो बात ही छोड़ो, कि कामना थी दशरथ के मन में तो उन मंत्रों से पुत्र इष्ट यज्ञ करवाया तो पुत्र हुआ। तो जितने भी मंत्र हैं साकाम हैं, अगर उनको हम करते हैं विधि पूर्वक तो कामनाओं की पूर्ति होती, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर वो मंत्र किसी तरह से गलत उच्चारण हो जाए या विधि में कोई त्रुटि रह जाए तो उनका नुकसान भी होता है। ऐसा भी सब तंत्र ग्रंथों में लिखा गया कि उनका नुकसान भी है। तो ओम जो है इसका नुकसान कोई नहीं। ये कैसे कहा गया है? ये अपने आप में मंत्र रूप में है और इससे कामनाओं की पूर्ति का अर्थ है कि पूर्ण काम हो जाए, कामनाएं छूट जाती। ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन कामनाओं के छूट जाने का मतलब होता है कि पूर्णता आ जाती है जीवन, जो चाहिए सो मिल गया। उसी स्थिति में पूर्णता आती। पूर्णता का अर्थ होता है कि जब मन में ये बात आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, जो कुछ मिल गया बहुत मिल गया, हर एक देने वाले ने सब कुछ दिया हुआ है, सब चीजें मुझे मिली हुई हैं, तो पूर्ण कामता का अर्थ होता है कि हर समय इस बात का एहसास कि मुझे कोई कमी नहीं, हर चीज देने वाले ने मुझे दे रखी है, और जब उसने दे रखी है तो फिर मैं भद्रता को क्यों छोड़ूं, भद्रता को और जीवन में अपनाऊं ताकि मैं और ये सब देने वाला जो है दोनों एक हो जाए। अंतम बात इसमें जीव और ब्रह्म की एकता की है। जीव और ब्रह्म की एकता तभी होगी जब ब्रह्म के गुण आप में आ जाएं या जीव के गुण ब्रह्म में डाल दो, दोनों तरह से काम बन सकता है। या तो ब्रह्म जीव बन जाए तब हमारे से मिल सकता है, या हम ब्रह्म बन जाएं तब मिल सकता है। तो ब्रह्म तो जीव बना हुए, हर जीव ब्रह्म ही है। जब भी सिद्धांत को आप देखेंगे तो ब्रह्म ने बनना बनाना कुछ नहीं, और हमें भी ये एक वहम ही है कि हम जीव बने हुए हैं। जितनी जितनी बुद्धि में सात्विकता आएगी, जितनी जितनी जीवन में भद्रता बढ़ती चली जाएगी, उतनी उतनी अपनी परिच्छिन्नता का ध्यान खत्म होता चला जाएगा। असल में अहम की परिच्छिन्नता और इदम की सत्यता यही सारे दुखों का कारण है, और दुख किसी तरह का नहीं होता। अहम को परिच्छिन्न मान लेना, मैं शब्द को, अपने मैं जो शब्द है उसका ही इसमें विचार आएगा और ओम के साथ उसको मिलाएं। इदम कहते हैं ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, तो इदम की सत्यता, इदम को सत्य मान लेना कि ये सच है, बस वहीं से सारे दुख शुरू होंगे। अब हम इसके प्रथम मंत्र का पाठ करते हैं और फिर इसकी व्याख्या का। ये मेरे पास दो प्रति है, इसमें पृष्ठ 6 पर प्रथम मंत्र है। ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम् भूतम् भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारेव यच्चान्यत् त्रिकालातीतम् तत्तपि ओंकारेव। अब इस ऋचा में, इस प्रथम मंत्र में ये बात कही गई है, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ये जो सब कुछ है, इदम का मतलब है ये, सर्वम का मतलब है सब कुछ। ये जो सब कुछ है, देखो इदम एक ऐसा शब्द है कि इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जाना जा सकता है, 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी किया जा सकता है, और चतुष अंतःकरण के माध्यम से जिस किसी की भी कल्पना की जा सकती। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जाना जा सकता है, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, बोलकर, चखकर, सूंघकर और कर्म इंद्रियों से जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जहां तक भी जा सकते हैं। अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके माध्यम से जिस किसी की भी कल्पना की जा सकती। और शास्त्र जो कुछ भी बतलाते हैं और जो कुछ भी शास्त्रों को पढ़कर आपकी समझ में आता है, उस सारे को मिलाकर इदम कहते। इदम का क्षेत्र, इदम कहां तक फैला हुआ है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इदम सर्वम, सर्वम में जड़ और चेतन, चार और आचार, व्यक्त और अव्यक्त सभी आ जाते हैं। जब सर्वम शब्द कह दिया तो इसमें जालचर, थालचर, नभचर, वो 84 लाख योनियां, जो जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं या जो जो कुछ भी आपको पता है, वो सर्व शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। सर्व, इदम सर्व, ये दोहरा, इदम का अर्थ ही वो था जो पहले किया, और सर्वम का मतलब है ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है। इदम सर्वम, अगर इतना ही बोला जाए कि इदम सर्वम, तो इसका मतलब है ये जो सब कुछ है, जो कुछ भी, इससे आप अंदाजा लगा लो, ये जो कुछ भी सब कुछ है, ये क्या है? अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षय ना, जिसका कभी विनाश नहीं होना, ये वो है। और जिसका कभी विनाश नहीं होना, क्योंकि ये जो कुछ हम देखते हैं ये तो हमारे अनुभव में आएगा नहीं कि इसका नाश नहीं होना, क्योंकि ये हमारे अनुभव में है कि इसका नाश होता है, ये टूटता है, फूटता है, खत्म होता है, जलता है, तो इसलिए इसको तो अक्षर कह नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका जो कारण है, आप तो कार्य को देख रहे हो, ये जो कुछ भी बना है अक्षर से बना है, और उस अक्षर को ओम कहते हैं। ये बात उन्होंने इस एक छोटे से मंत्र के माध्यम से कह दी। देखो यहां पर एक बात आप ये भी देख लें कि जब हम ओम अपने आप में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, लिखा हुआ आप देख लेंगे कागज पर उसका अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में इसको देख लेंगे, लेकिन इसकी असलियत को समझने के लिए कि ओम से ये किस बात का प्रतीक है, हर शब्द किसी न किसी चीज की ओर इशारा करता है। शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द भी हम बोलेंगे वो वस्तु कहीं बाहर होती है, और उस वस्तु का ज्ञान हमारे हृदय में होता है। ये तीन बातें रहती हैं। कोई भी शब्द बोले, जैसे पुष्प एक शब्द है, या जल, पानी एक शब्द है, तो जब पानी कहेंगे तो पानी शब्द तो मैं अपने मुंह से बोलूंगा, पानी कहीं और पड़ा हुआ है मेज पर या इधर उधर कहीं, और पानी का जो अर्थ है इस शब्द का वो मेरे हृदय में है, जिससे मैं पहचानूंगा। जब पानी सामने आएगा तो मैं पहचान लूंगा कि ये पानी है। अगर मेरे हृदय के अंदर वो शब्द का अर्थ नहीं है तो मैं पानी को पहचान नहीं पाऊंगा। कोई कुछ भी दे दे मैं उसे पानी समझ लूंगा। तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण जिह्वा से होती है, वो वस्तु कहीं बाहर होती है और उसका अर्थ हमारे हृदय में होता है, उसकी आकृति। आकृति का मतलब है कि वो कैसी चीज है, क्या है, ये हम अंदर जानते हैं। देखो, किसी व्यक्ति का नाम भी हमने लिया तो नाम तो शब्द है, वो तो मैं मुंह से बोलूंगा। वो व्यक्ति कहीं बाहर है लेकिन उस व्यक्ति की शक्ल सूरत मेरे अंदर है, हृदय में, जिससे मैं उसे पहचानूंगा कि आते ही कि हाँ ये है वो। तो हर शब्द के साथ ये बात जुड़ी हुई, लेकिन कुछ जिनको मूल धातु, जिससे सारे शब्द पैदा होते हैं, जिसको हम तत्व कहते हैं। अच्छा, एक बात को आप इस ढंग से समझें तो फिर आप ओम के इस रहस्य को भी समझें। ये जितनी चीजें भी हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको छोड़कर ये जो चीजें, पत्थर, चींटी, हाथी, घोड़ा, कुर्सी, मेज, कार, जो कुछ भी, ये हम सब मानते हैं कि ये ब्रह्म से ही पैदा हुए। एक तत्व है ब्रह्म, उससे ये सब कुछ बना। और कोई चीज ऐसी नहीं है जो ब्रह्म के अतिरिक्त हो, ब्रह्म से ही सब बना है, ये उसी का विस्तार। पंचभूत उसी से बने हैं, फिर पंचभूतों से चीजें बनी। तो सब की सब जो चीजें हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम ना, जिसका नाम नहीं है वो चीज भी नहीं। हर चीज का कोई ना कोई नाम है। जैसे कुर्सी है तो ये कुर्सी है, ये मेज है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये शब्द नाम है। घोड़ा एक जानवर है जिसको देख के हम पहचानते। तो सब चीजें तो ब्रह्म से बनी, लेकिन हर चीज का जो नाम है वो शब्द है एक, और सारे के सारे शब्द आ से बने हैं। अगर आ ना हो, आ आ ई ई जो आप लिखते हैं, आ ऊ और मा, ये तीन प्रमुख ध्वनियां हैं। आ ऊ मा ये ध्वनि है जिनको हम, ध्वनि का मतलब है हमारे लिए, हम इन ध्वनियों को शब्द समझते हैं, और जो हिंदी नहीं जानता उसके लिए ये ध्वनि है। मैं बोल रहा हूं, हम गीत गाएं, जिसको हिंदी नहीं आती, अगर कोई फ्रांस का आदमी बैठा हुआ हो, फ्रेंच, यहां कोई और ऐसा बैठा हो जिसकी अपनी भाषा कुछ और है, तो उसके लिए ये जो हम बोल रहे हैं ये ध्वनि मात्र है, उनका अर्थ कुछ नहीं। इनके अर्थ हमारे लिए ही हैं, दूसरे के लिए नहीं है। हमारे लिए क्योंकि हमने ध्वनियों को अक्षर मान लिया। उनकी अपनी ध्वनियां हैं, वो भी बोलेंगे तो उनके भी अक्षर बनेंगे, वो पहचान जाएंगे, हमें नहीं पता लगेगा। कोई एक बैठा हुआ रूसी भाषा में बहुत ही मार्मिक गीत गाए और उसमें रशियन बैठे होंगे, वो गीत सुन के उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हमारे लिए वो एक ध्वनि है, हम कहेंगे ऐसे ही ऊं आ कर रहे थे, कुछ भी नहीं। लेकिन विश्व भर में जितनी भी ध्वनियां होंगी, आ ऊ और मा, ये सब ध्वनियों का सार है। और ये ध्वनि प्रारंभिक, आप ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, ये समझ लो कि बच्चा पैदा होते ही जब रोता है तो यही उसके मुंह से आओ मां, उसको मां मां कह लो आपके, वो मां को पुकारता है। उसको ओम कह लो आपके, वो ओम का उच्चारण करता है। ध्वनि के हिसाब से देखो तो आ ऊ और मां, ये वो ध्वनि है जो पैदा होती, इसीलिए इसको प्राइमोर्डियल वॉयस कहते। तो आ ऊ और मा ये तीन ऐसी ध्वनियां हैं, सभी शब्द इससे ही बनेंगे। आ ऊ और मा को मिला दें तो ओम बन जाता है। तो जितने भी चीजों के नाम हैं ये इनकी उत्पत्ति ओम से हुई। चीजें जो बनी हैं वो ब्रह्म से बनी, चीजों के नाम ओम से बने। आप ऐसा समझ लो कि कोई ब्रह्म में एक चीज है वो इधर रखी हुई है राइट हैंड में, और ओम एक शब्द है वह उधर रखा हुआ है लेफ्ट हैंड में। ब्रह्म से कुछ चीज बनी, इधर जो ओम है इसने उस चीज का नाम रख दिया। ब्रह्म में पहली हलचल हुई, इधर से बन गया उसको अव्यक्त। दूसरी हलचल हुई महतत्व। तीसरी उसमें कुछ हलचल हुई अहम। चौथी हलचल हुई तन मात्राएं। पांचवी हलचल हुई आकाश। छठी हुई वायु। सातवीं हुई पृथ्वी। ब्रह्म बनता जा रहा है और उसका जो नाम रखा जा रहा है वो अ उ और मां, ये तीन ध्वनियां मिलके उसके नाम रखती जा रही। अगर नाम नहीं होंगे तो वो चीजें भी नहीं होंगी। ऐसा होता नहीं है कभी कि चीजें बन जाएं और नाम ना हो, ऐसा नहीं होता। और केवल नाम ही नाम बन जाए चीजें ना हो, ये भी नहीं होता। तब संसार पूरा बनेगा कि इसी को वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। वाच्य वाचक संबंध का मतलब यह है कि ओम तो वाचिक है, आ ऊ और मा ये ध्वनि, और इधर जो चीजें बन रही हैं वो वाच्य है। तो दोनों का इस तरह का एक संबंध, इसी की व्याख्या इसमें करेंगे। ये समझ में जितना जितना आता जाएगा, जितना जितना आगे चलेंगे, अभी तो मैंने आपको एक किस्म का जो सब कुछ जिसकी व्याख्या करनी है उसको संक्षेप में शुरू में ये बात बतला दी कि इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे कि नाम और वस्तु। नाम का मतलब ओम, वस्तु का मतलब ब्रह्म। बस ये दोनों का एकता कैसे होगी, कैसे इस सत्य तक पहुंचे, वो इसी की व्याख्या में आएगा। ओम शांति।